हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के कार्यक्रम में। सर्वप्रथम हम सभी भक्तों का आभार व्यक्त करना चाहेंगे और हमारे अंतःकरण से धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने इस वर्ष की जन्माष्टमी और श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा महोत्सव को सफल बनाया। और श्रील प्रभुपाद और संपूर्ण गुरु परंपरा की ओर से हम सभी भक्तों का धन्यवाद देना चाहेंगे। तीन बार जोर से हरि बोल। श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस इस महीने की 3 तारीख को हम मनाएं, तो आज मैंने सोचा उसी उत्सव की चेतना में हम आज के हमारे रविवार के कार्यक्रम में श्रील प्रभुपाद के विषय में चर्चा करें। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसे भगवान श्री कृष्ण वो जन्मे और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जन्म लीला और हाँ उसके पश्चात उनकी अन्य लीलाएं, उनमें भगवान ने अपने निज पार्षदों को उसका श्रेय दिया। जैसे कि हमने इसकी चर्चा की थी कि भगवान ने वसुदेव देवकी नंद और यशोदा इन्हें माध्यम बनाया अपने स्वयं की जन्म लीला का। तो यदि हम भगवान जो 5000 वर्ष पूर्व जन्मे और जो उन्होंने लीला की जब वो इस भौतिक संसार में आए और कलयुग में 21वीं सदी में यदि हम भगवान की चर्चा करें तो ये प्रश्न उठ सकता है कि क्या इस कलयुग में भगवान किसी भी रूप से अवतरित हो। भगवान तो नित्यकाल किसी न किसी रूप से इस भौतिक संसार में मौजूद रहते हैं। जैसे कलयुग में अपने नाम के रूप में हैं, अर्च विग्रह के रूप में हैं, धाम के रूप में हैं, ग्रंथों के रूप में हैं, तो क्या इन अनगिनत रूपों में कलयुग में भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित होते हैं तो क्या अपने निजी पार्षदों को वो अपने इस अवतीर्ण का कारण बनाते हैं। जैसे उन्होंने 5000 वर्ष पूर्व वसुदेव देवकी नंद यशोदा इनको बनाया था। हाँ अवश्य। और उन निजी पार्षदों में से एक श्रील प्रभुपाद, जो भगवान श्री कृष्ण न केवल भगवान श्री कृष्ण बल्कि भगवान श्री कृष्ण की भावना का अमृत उसे अवतीर्ण कराने में सहायक हुए। वो भवानंद प्रभु एक बार वो श्रील प्रभुपाद की मेमोरीज में बता रहे थे कि श्रील प्रभुपाद ने एक बार उनसे कहा कि मैं यहां आना नहीं चाहता था। तो भवानंद प्रभु को लगा कि शायद अमेरिका की बात कर रहे हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैं इस भौतिक संसार में आना नहीं चाहता था। तो भवानंद प्रभु अचानक उनकी आंखें और ज्यादा खुल गई कि प्रभुपाद इस प्रकार की बात पहली बार उनके मुख से वो सुन रहे थे, ऐसे कैसे कह रहे हो। प्रभुपाद ने कहा मैं नहीं आना चाहता था इस भौतिक संसार में, भगवान कृष्ण ने मुझे जबरदस्ती भेजा और मैं भगवान श्री कृष्ण से वाद विवाद कर रहा था कि नहीं जाना है मुझे वो भौतिक संसार जहां पर नहीं गंदगी प्रदूषण हर प्रकार का प्रदूषण हृदय का वातावरण का सब प्रकार का प्रदूषण माया का प्रकोप। तो भगवान ने प्रभुपाद से कहा कि मैं आश्वासन देता हूं जाओ नीचे पूर्ण सुरक्षा मेरी होगी। सोचिए अब कई बार कोई नेता यहां वहां जाते हैं तो उनकी सिक्योरिटी जाती ना, जेड सिक्योरिटी बोलते हैं। तो कल्पना कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण अपनी सिक्योरिटी भेज रहे हैं ए टू जेड, केवल जेड नहीं। तो भगवान प्रभुपाद कहे भवानंद प्रभु से, भगवान ने कहा कि मैं अपनी पूरी सिक्योरिटी आपके साथ भेजूंगा, आप केवल जाओ और इन ग्रंथों का प्रकाशन करो। तो प्रभुपाद कोई पार्षदों में से भी कोई साधारण पार्षद नहीं थे। जैसे कि जब नित्यानंद प्रभु ने ये घोषणा की थी मोर सेनापति, कि मेरा एक सेनापति मेरा एक प्रतिनिधि अवतरित होगा जो कि भगवान श्री कृष्ण के इन नामों को चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पूरे विश्व में फैलाएगा और किसे भी इसकी कल्पना नहीं थी कि क्या वो श्रील प्रभुपाद होंगे। यहां तक कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बड़े बड़े सन्यासी शिष्य वो आश्चर्यचकित रह जाते जब वो ये सारी घोषणाएं सुनते ग्रंथों में लिखी गई कि पूरे पृथ्वी में नगर आदि ग्राम में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के नामों का प्रचार प्रसार होगा। उन्हें संशय होता। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व अवतीर्ण हुए और उनके अवतीर्ण में सहायक बने उनके निज पार्षद, और भगवान अवतीर्ण होने से पहले भगवान हर समय अपने निज पार्षदों को पहले भेजते हैं, तो उसी प्रकार यदि हम ये तुलना करें कि इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में भगवान श्री कृष्ण का जन्म और इनके पीछे कारण कौन, तो हम आज शुरुआत करेंगे श्रील प्रभुपाद की तुलना वसुदेव जी से करकर कि दोनों में समानताएं कैसे देखी जाती हैं। श्रील प्रभुपाद और वसुदेव जी जिनकी हम चर्चा भी कर रहे थे कि उनका त्याग उनकी तपस्या और न केवल त्याग और तपस्या उनकी निपुणता भगवान श्री कृष्ण के अवतीर्ण होने में। तो सर्वप्रथम यदि देखें तो वसुदेव जी वो भगवान के जनते ही भगवान को मथुरा से गोकुल ले गए और ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि भगवान का आदेश था, भगवान ने वसुदेव जी को आदेश दिया था। तो भगवान का सानिध्य छोड़कर वसुदेव जी भगवान के आदेशों का पालन करते हुए भगवान को गोकुल ले गए। अब यदि श्रील प्रभुपाद के जीवन में हम देखें, श्रील प्रभुपाद कहां थे, वृंदावन में, वो भी श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में। और श्रील प्रभुपाद को आदेश उनके गुरु महाराज ने दिया था कि भगवान श्री कृष्ण के भगवद गीता का संदेश और चैतन्य महाप्रभु के हरिनाम का संदेश पूरे विश्व में फैलाओ। तो उस उम्र में 70 वर्ष की उम्र में अक्सर वृंदावन लोग जाते हैं वानप्रस्थ और संन्यास लेकर, अपना जो अंतिम जीवन है वो बिताने के लिए। यहां श्रील प्रभुपाद तैयारी में लगे थे वहां पर कि कैसे वृंदावन छोड़ें। लोग तैयारी में लगते वृंदावन जाने की, यहां प्रभुपाद तैयारी में थे वृंदावन छोड़ने की। क्यों? जैसे वसुदेव जी ने आदेशों का पालन कर भगवान श्री कृष्ण की लीला जहां अच्छी तरीके से हो सके, कहां, गोकुल में, वहां पर ट्रांसफर किया। तो प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण को जैसे वसुदेव जी ने अपने ऊपर उठाया कृष्ण को, वैसे प्रभुपाद अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को धारण किए और अपने गुरु महाराज का आदेश, जो कि भगवान का ही आदेश, उसे लेकर, जैसे वसुदेव जी जमुना पार किए, श्रील प्रभुपाद ने अटलांटिक ओशन पार किया। और वसुदेव जी को बहुत कठिनाई हुई जमुना पार करने में, बहुत आसान नहीं था। जैसे श्रील प्रभुपाद को बहुत कठिनाई हुई जलदूत में, कितने, 3 हार्ट अटैक, और वो भी उस उम्र में, इतनी तकलीफें, और वो भी एक मालवाहक जहाज था वो। यदि आप जहाजों के बारे में जानते हैं, आजकल तो लोग क्रूज पर जाते हैं, और वो जो जहाज होते हैं वो ऐशो आराम के जहाज होते हैं, व्यक्तिगत अनुभव से बता रहे हैं। व्यक्तिगत अनुभव से ये बता रहे हैं कि हाल ही में हम जब गए थे ऐसे ही एक ऐशो आराम के जहाज में, जल के जहाज में, तो मन में सर्वप्रथम यही विचार आया कि प्रभुपाद 70 वर्ष की उम्र में, उन्हें कुछ 2-2.5 महीने लगे, और वो भी एक कार्गो शिप, और उनके पास था क्या, श्रीमद् भागवत। और वो क्योंकि अमेरिका जा रहे हैं, कुछ ठिकाना नहीं वहां पर, कि वहां पर ऐसा नहीं कि कोई उनको वेलकम करने के लिए वहां पर खड़ा था, तो अपने साथ कुछ दाल चावल ले गए थे खिचड़ी पकाने के लिए। तो प्रभुपाद जिस प्रकार से वसुदेव जी, उन्होंने भगवान के आदेशों पर विश्वास रखते हुए भगवान ने कहा कि जाओ, उसी प्रकार से प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज के आदेशों पर विश्वास रखते हुए वो जब गए, तो धीरे धीरे भगवान, और ये भी घटना है कि साक्षात भगवान जलदूत में श्रील प्रभुपाद के सिरहाने आए, और श्रील प्रभुपाद के सिरहाने आकर श्रील प्रभुपाद को सहलाया साक्षात भगवान। श्री प्रभुपाद ये अपना साक्षात्कार बताते थे, और भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं हूं तुम्हारे साथ। तो ये समानताएं हम देखते हैं वसुदेव जी और श्रील प्रभुपाद में। और एक बहुत महत्वपूर्ण गुण जो हम वसुदेव जी और श्रील प्रभुपाद में देखते हैं, जिनके ऊपर हम ज्यादा चर्चा करेंगे आज, वो है कि भगवान को जनता तक पहुंचाना, भगवान श्री कृष्ण की भावना को जनता तक पहुंचाना, जन साधारण तक पहुंचाना, इसके लिए वसुदेव जी में काबिलियत थी और काबिलियत के साथ चरित्र, जो कि श्रील प्रभुपाद में भी हम देखते हैं कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस. अब वसुदेव जी का उदाहरण तो हम सुने हैं कि वसुदेव जी ने कितनी काबिलियत से भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की, देवकी की रक्षा की, जब कंस उसी समय देवकी को मारना चाहता था जब आकाशवाणी हुई थी. यदि श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में आप पढ़ो तो वसुदेव जी ने कितनी निपुणता से उस समय, बहुत ही निपुणता से वसुदेव जी ने देवकी की रक्षा की और देवकी के आठवें गर्भ की रक्षा की. तो ये उनकी काबिलियत थी और उस समय उन्होंने जिस काबिलियत से कंस को कन्विंस किया और उस स्थिति में कंस को रोक दिया और कंस को यह आश्वासन दिया कि जो भी पुत्र पैदा होगा मैं लाकर अपने हाथों से दूंगा. यह उनका चरित्र और उनका ऐसा चरित्र देखकर कंस भी पिघल गया था. कंस ने देखा कि अरे वसुदेव, इसने अपने शब्द रखे जो इसने दिए मुझे, यह अपना ही पुत्र मुझे मेरे पास लाकर दे रहा है मारने के लिए. तो कंस का हृदय पिघल गया वसुदेव जी के चरित्र को देखकर. तो भगवान श्री कृष्ण की रक्षा वसुदेव जी ने अपनी काबिलियत और चरित्र को इस्तेमाल करते हुए किया, जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की प्रस्थापना अपने चरित्र के बलबूते पर और अपनी काबिलियत के बलबूते पर की. जन सामान्य को भगवान श्री कृष्ण की भावना उन्होंने, और इन दोनों के बलबूते पर ही कोई आचार्य जो हैं वो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को जन सामान्य तक पहुंचा सकते हैं. तो यदि हम देखें अब श्रील प्रभुपाद के जीवन में, एक तरफ उनका चरित्र और एक तरफ उनकी काबिलियत, क्योंकि कई होते हैं जिनके अंदर काबिलियत होती है चरित्र नहीं, और कई हैं जिनके अंदर चरित्र है लेकिन वो काबिलियत नहीं. लेकिन श्रील प्रभुपाद में दोनों बखूबी से उन्होंने इन दोनों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल किया. जैसे कि प्रभुपाद के चरित्र के विषय में चर्चा करें, जलदूत में, अब श्रील प्रभुपाद जब जलदूत में बंबई से भारत से निकले और अमेरिका की ओर, और जलदूत में उनकी प्रार्थना जो प्रसिद्ध हम गाते हैं, नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से माते, कि श्रील प्रभुपाद अपने आप को एक कठपुतली मान रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से और अपने गुरु महाराज से कि मैं केवल एक कठपुतली बनना चाहता हूं आपके हाथों. तो यहां प्रभुपाद का चरित्र देखने मिलता है कि प्रभुपाद ने कभी भी ऐसी प्रार्थना नहीं की थी कि मुझे बहुत सारे शिष्य मिलने चाहिए वहां, मैं इस्कॉन का फाउंडर आचार्य उस प्रकार से प्रसिद्ध होना चाहिए. तो शुरुआत से उनकी प्रार्थना, उनकी प्रार्थनाओं से, यहां तक कि एक वृंदावन के बाबा जी बताया करते थे कि श्रील प्रभुपाद अमेरिका जाने से पहले, 1965 से पहले, प्रभुपाद जब राधा दामोदर मंदिर में रहा करते थे, वहां पर किसी को ये अंदेशा नहीं था कि प्रभुपाद अमेरिका जाएंगे. वो तो एक साधारण जो कोई यात्री आता है राधा दामोदर में मंदिर में रहता है, कोई गौड़िया वैष्णव, ऐसा मानते थे. तो ये बाबा जी आगे बताए कि वो अक्सर रात के समय श्रील प्रभुपाद की आवाज सुनते, श्रील प्रभुपाद झाड़ू मारते हुए राधा दामोदर मंदिर के आंगन में झाड़ू मारते हुए रूप और सनातन गोस्वामी से प्रार्थनाएं करते और उनकी आंखों में आंसू होते. रूप और सनातन गोस्वामी से प्रार्थना करते हुए प्रभुपाद उनसे आशीर्वाद और उनसे शक्ति मांगते कि उनके गुरु महाराज ने जो उनको आदेश दिया उसको वो कैसे सिद्ध करें। तो ये प्रभुपाद का चरित्र शुरू से, हालांकि यदि लीलामृत हम पढ़ें तो बचपन से, अब जब भी प्रभुपाद ने अमेरिका में या कहीं पर भी प्रचार में सफलता प्राप्त की, तुरंत प्रभुपाद उस सफलता को अपने गुरु महाराज को पहुंचाते एज इट इज। जब भी प्रभुपाद का गुणगान उनके शिष्य करते तो प्रभुपाद तुरंत कह देते कि नहीं, ये जो कुछ हो रहा है ये केवल मेरे गुरु महाराज की वजह से। एक बार तमाल कृष्ण महाराज बता रहे थे कि ये शुरुआत के दिनों की बात है, जब वहां पर ये जो भी कुछ शिष्य बने थे, अनुयायी बने थे, जानते भी नहीं थे कि श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज कौन हैं और ये गुरु महाराज होते क्या हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर, इनका तिरुभाव दिवस, और प्रभुपाद ने उनके जो भी थोड़े से शिष्य थे उनको कहा कि हमें बहुत धूमधाम से ये शिष्य मन ये उत्सव मनाना है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर का तिरुभाव। अब उन्हें उनके सामने तो केवल एक ही उनके स्वामी जी थे, तो उनके अंदर इतनी कुछ प्रेरणा नहीं थी कि ये किसका तिरुभाव क्या होता है और इसका उत्सव। तो प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को जब कहा कि किस प्रकार से हम मनाएंगे, तो प्रभुपाद ने फिर एक घंटे पश्चात पूछा कि तैयारियां कैसे चल रही हैं। तो तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद की तरफ देखे और बोले कि हम तो सोचे आप सब करेंगे, तो हम तो मतलब वो सोच रहे थे हम तो बैठ के स्पेक्टेटर जैसे देखेंगे, आप करो, आपके गुरु महाराज हैं। तो प्रभुपाद ने दो घंटे बाद देखा कि किचन में कुछ नहीं हो रहा है। प्रभुपाद ने सब बताया था कि क्या क्या कैसे ऑफरिंग्स होना चाहिए, फीस्ट बनना चाहिए, कितने लोगों के लिए, सब कुछ, कुछ तैयारी नहीं। प्रभुपाद ने देखा कि जो थोड़े बहुत वहां पर सब सोए थे, केवल तमाल कृष्ण महाराज जगे हुए थे। प्रभुपाद खुद वो स्नान कर तिलक लगाकर कपड़े पहनकर गए और प्रभुपाद ने अकेले, तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं, अकेले एक घंटे में 12 कोर्स फीस्ट, और वो भी 70 लोगों के लिए, और 70 पीपल 12 कोर्स फीस्ट इन 1 आवर, अकेले प्रभुपाद ने, कोई उनकी सहायता में नहीं था उस समय। तो ऐसा नहीं कि प्रभुपाद केवल शिष्यों को बोलते थे कि मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज, प्रभुपाद ने करके भी दिखाया। तो इन सब कुछ घटनाओं से हमें देखिए, बहुत से ऐसे योगी गुरु गए अमेरिका और उन्होंने अपनी वाणी से बहुत प्रभावित किया जनता को, लेकिन ये सारे हिप्पी, इन्होंने अपना जीवन, सर्वस्व जीवन प्रभुपाद को क्यों दिया? प्रभुपाद के चरित्र को देखते हुए। और प्रभुपाद के लिए यदि उनका चरित्र का गुणगान हम करने जाएं, तो प्रभुपाद के लिए ऐसा नहीं था कि, कई बार ये देखा जाता है कि बहुत लोगों के सामने कोई व्यक्ति चरित्र का भी प्रदर्शन करता है, लेकिन जैसे उन बाबा जी ने कहा कि अकेले जब प्रभुपाद राधा दामोदर में रहा तब तो कोई इस्कॉन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, अकेले प्रभुपाद वो शुद्ध भाव से रूप सनातन गोस्वामी को प्रार्थना किया करते थे। और ये एक और घटना है, जब प्रभुपाद शुरू के दिनों में अमेरिका में, प्रभुपाद खुद जो भी पहले तो वो डॉक्टर मिश्रा थे जो कि वो प्रवचन किया करते थे और उन्होंने श्रील प्रभुपाद को रहने के लिए कुछ सुविधा प्रदान की थी। और ये डॉक्टर मिश्रा ये प्रवचन किया करते थे योग के ऊपर और मायावाद, योग और मायावाद की खिचड़ी, इसके ऊपर वो प्रवचन किया करते थे। और एक ऐसा वीडियो है जिसमें प्रभुपाद ऑडियंस में बैठे हैं, ये डॉक्टर मिश्रा मायावाद बोल रहे हैं, प्रभुपाद ऑडियंस में बैठे, वो ऐसा वीडियो भी है कि प्रभुपाद ऑडियंस में बैठे हैं और नम्रता से सुन रहे हैं। देखिए, जिनके अंदर भक्ति और वेदांत का ऐसा ज्ञान, वो भक्ति वेदांत स्वामी ऑडियंस में बैठकर एक लल्लू पंजू मायावाद योग के ऊपर बता रहा है, उसको सुनना पड़ रहा। और प्रभुपाद ने डॉक्टर मिश्रा को कहा भी, प्रभुपाद ने डॉक्टर मिश्रा को कहा कि देखिए, आपको विशेष रूप से मुझसे ज्यादा आपको चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करना चाहिए। तो उन्होंने पूछा क्यों, क्योंकि आपका सरनेम मिश्रा है और चैतन्य महाप्रभु के पिताजी का नाम था जगन्नाथ मिश्रा। तो प्रभुपाद ऑडियंस में बैठे और जो भी वो उनके ये डॉक्टर मिश्रा के प्रवचन के पश्चात प्रभुपाद इक्का दुक्का किसी से मिलते और थोड़ा भी कोई इंटरेस्ट बताता तो प्रभुपाद उनको कहते, जो भी बोल रहे हैं ना बकवास है ये, उनको प्राइवेटली कहते कि असली वेदांत सूत्र का दर्शन क्या है वो बताते हैं उनको। तो ऐसे इनमें से एक दो थे, उन्होंने जो प्रभुपाद से सुना कि हाँ आप जो कह रहे हो वो उसमें कुछ तथ्य लगता है। तो ये प्रभुपाद की उस समय की नम्रता थी। और प्रभुपाद वहां पर फिर कहते थे कि मैं फिर वहां से जब शिफ्ट हुए तो प्रभुपाद जो भी कॉन्टैक्ट्स थे उनको बुलाते। तो एक ऐसी घटना थी जब प्रभुपाद ने स्वयं एक भगवद गीता इवनिंग क्लास के लिए सबसे पहले जब अमेरिकी हिप्पियों को और जो भी वहां पर आए जान पहचान के हुए उनको बुलाया और प्रभुपाद पूरी तैयारी में अमेरिका में वहाँ 26 सेकंड एवेन्यू में सब जो उनका स्टोर फ्रंट था उसको पूरा साफ कर कर प्रभुपाद तैयार बैठे कि आज पहली बार कोई आएंगे मुझे सुनने के लिए। और इस प्रकार से बारिश हो रही थी, एक व्यक्ति भी नहीं आया, एक व्यक्ति भी नहीं आया। प्रभुपाद आधा घंटा एक घंटा प्रतीक्षा की, एक व्यक्ति भी, और उस समय तो कोई ऐसा नहीं था मोबाइल या किसी को मोबाइल कर कर बुलाएं, प्रभुपाद के तो फोन भी नहीं था। तो प्रभुपाद का चरित्र यहां देखने मिलता है कि प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज का आदेश कैसे पालन किया। उनके गुरु महाराज ने कहा था कि यदि कोई नहीं आए तो चार दीवारी को प्रचार करो। क्या हम में से, अब हम जो इतना इस्कॉन में स्थित हैं, हमारे प्रोग्राम में 10 लोग कम आते हैं तो हम क्या है प्रोग्राम हुआ। यहां पर प्रभुपाद ने टेप रिकॉर्डर सामने रखा और टेप रिकॉर्डर में लेक्चर दिया, उसको रिकॉर्ड किया, टेप रिकॉर्डर को लेक्चर दिया, कोई ऑडियंस नहीं, टेप रिकॉर्डर सामने रखा और वो लेक्चर दिया। और ऐसा नहीं कि केवल फॉर्मेलिटी के रूप में बस 15-20 मिनट जब गुरु महाराज ने कहा है तो कुछ तो बोलना चाहिए। आपने यदि भगवद गीता एज इट इज, भगवद गीता यथारूप का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, कितना बड़ा है वो प्रभुपाद का उस समय का वो लेक्चर था जो टेप रिकॉर्ड में उन्होंने रिकॉर्ड किया था, उसको आगे चल के ट्रांसक्राइब किया जो भगवद गीता एज इट इज का इंट्रोडक्शन बना। तो प्रभुपाद की विशेष काबिलियत, यदि ये भी कहें कि उनका जो कॉम्पिटेंस उनके चरित्र में छिपा था, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक संस्था प्रस्थापित कर रहे थे। हाँ, भौतिक संस्था कोई प्रस्थापित करता है तो हो सकता है चरित्र की जरूरत ना पड़े, लेकिन यदि किसी को इस प्रकार का शुद्ध संदेश प्रस्थापित करना है आध्यात्मिक संस्था की ओर से, और आध्यात्मिक संस्था की सहायता से, तो चरित्र, वो काबिलियत चरित्र में छिपी रहती है। और इसलिए प्रभुपाद को जब पूछा जाता था कि प्रभुपाद आपका, आपके गुरुदेव से संबंध कैसा था, एक दफा प्रभुपाद को ये पूछा गया कि आपके गुरु महाराज से आपका संबंध कैसा था, तो प्रभुपाद ने कहा, माय रिलेशनशिप विथ माय स्पिरिचुअल मास्टर्स ओनली 5 words, हाउ कैन आई सर्व यू, बस दिस वॉज माई रिलेशनशिप विथ माई स्पिरिचुअल मास्टर प्रभुपाद ने कहा, हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपकी सेवा कैसे करूं, किंकर जिसे कहते हैं। और प्रभुपाद का चरित्र ऐसा नहीं कि जब प्रभुपाद इस्कॉन शुरू किए उस समय जब इतने उनको जद्दोजहद करनी पड़ी, इतने स्ट्रगल्स थे उस समय भी, और जब प्रभुपाद इतने सफल प्रचारक बने, इतने सारे केंद्र, इतने सारे शिष्य, इतनी पुस्तकें, इतने प्रोजेक्ट्स, प्रभुपाद दोनों स्थितियों में समान थे। जब प्रभुपाद का सब कुछ छिन चुका था तब भी प्रभुपाद उतने ही शरणागत थे, और जब भगवान ने सब कुछ दिया प्रभुपाद को तब भी वो उतने ही शरणागत थे। इसलिए प्रभुपाद वो एक दफा अपने शिष्यों को कह रहे थे कि जब भगवान ने शुरुआत में मेरा बिजनेस, मेरा परिवार, पैसा सब कुछ छीन लिया, उस समय भी मैं एक बैरागी की तरह घूम रहा था, और आज भगवान ने, भगवान की कृपा से क्या कुछ नहीं दिया है, मैं कहीं पर भी जाऊं मुझे वो 5-star अरेंजमेंट मिल सकता है रहने के लिए, मेरे जीवन बिताने के लिए इस्कॉन में। अरे जब शिष्य जान देने के लिए तैयार थे तो क्या प्रभुपाद के ऐशो आराम के लिए वो व्यवस्था नहीं करते? प्रभुपाद ने कहा, अब भी मेरी स्थिति वही है जो मैं उस समय थी मेरी, मैं 3 दिन टिक नहीं सकता इस जगह, यहां से वहां, यहां से वहां। हालांकि प्रभुपाद की नम्रता थी, प्रभुपाद ये कहना चाहते थे, प्रभुपाद का आशय ये था कि अब भी जो मेरी सेवा कृष्ण के प्रति है वो वैसी ही है। और एक, जब मैं लीलामृत पढ़ रहा था तो मुझे प्रभुपाद का ये एक गुण देखकर और पढ़कर बहुत मन द्रवित हुआ कि प्रभुपाद ने अपने पीक पीरियड में, इस्कॉन के पीक पीरियड में, जब श्रील प्रभुपाद ने खुद पर्सनली इतना स्ट्रगल कर जो इस्कॉन इस्टैब्लिश किया, उस पीक पीरियड में प्रभुपाद ने अपने गॉड ब्रदर्स को लेटर लिखा, अपने गुरु बंधुओं को इंडिया में लेटर लिखा कि आप लोग आओ, आप लोग टेक ओवर करो। और प्रभुपाद ने उन लेटरों में लिखा कि आप लोग मुझसे ज्यादा काबिल हो, मुझसे ज्यादा शास्त्र जानते हो, मुझसे ज्यादा अच्छा प्रचार कर सकते हो, तो मैं सब कुछ अरेंज करके रख दिया हूं आप लोगों के लिए, आपके रहने की व्यवस्था, प्रसाद खाने की व्यवस्था, यहां तक कि ये जितने सारे अब मेरे शिष्य हैं मैं इन सब को आपके अनुयायी बनाऊंगा। इसे कहते हैं चरित्र। अब यदि प्रभुपाद की काबिलियत को देखें कि हां प्रभुपाद के अंदर शुद्धता इतनी थी, भूरी भूरी मात्रा में ऐसी शुद्धता थी, उसके साथ साथ प्रभुपाद का कॉम्पिटेंस, प्रभुपाद की काबिलियत, जैसे कि कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन कहा गया है। अब यदि देखें प्रभुपाद 1965 में अमेरिका गए, और प्रभुपाद का तिरोभाव हुआ 1977 में, तो कितने वर्ष? 12। इन 12 वर्षों में प्रभुपाद की काबिलियत देखिए, 70 वर्ष की उम्र में उन्होंने 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण किया प्रचार के लिए। 12 वर्ष में 14 बार पूरे विश्व का, ऐसा नहीं कि केवल जो एकदम कंफर्टेबल कंट्रीज हैं वहां जाके प्रचार किया, कहां कहां प्रभुपाद नहीं गए उस उम्र में। मैनेजिंग वर्ल्ड वाइड इस्कॉन, ट्रैवलिंग 14 टाइम्स ओवर द ग्लोब। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि प्रभुपाद ने उन 12 वर्षों में पूरे वर्ल्ड वाइड इस्कॉन को मैनेज किया बिना फोन के, बिना ईमेल के। गिन के प्रभुपाद ने केवल 9 फोन कॉल्स किए 12 वर्षों में। सोचिए, हमको एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए कितने हजारों फोन करने पड़ते हैं, कितने एसएमएस करने पड़ते हैं। प्रभुपाद ने 12 वर्षों में वर्ल्ड वाइड इस्कॉन को मैनेज करने में खाली 9 फोन कॉल्स, और वो भी 9 फोन कॉल्स कोई ऐसे नहीं थे कि कोई बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स के बारे में चर्चा होती थी। प्रभुपाद को किसी ने फोन लाकर दिया था उनके कमरे में, तो जब लाकर दिया तो पहली दफा वो रात के 1 बजे फोन बजा। प्रभुपाद उठे और प्रभुपाद को पूछा, जिसने भी कोई भक्त ने फोन किया, प्रभुपाद हाउ आर यू, तो प्रभुपाद ने कहा इसको निकालो ये फोन को। अच्छा, उस समय तो कोई ईमेल नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं, कुछ नहीं, कोई ईमेल नहीं। प्रभुपाद वो जो मेल्स, ये लेटर बॉक्स और पोस्ट ऑफिस से जो मेल्स जाते हैं, उस प्रकार के मेल्स को प्रभुपाद पर्सनली, ऐसे एक भी शिष्य नहीं है प्रभुपाद के जिनके ये शिकायत रही कि प्रभुपाद ने मेरे लेटर का रिप्लाई नहीं किया पर्सनली। हर एक शिष्य के हर एक लेटर, चाहे वो कोई वृद्ध महिला हो, चाहे वो कोई हिप्पी हो, चाहे वो तमालकृष्ण महाराज जैसे बड़े सन्यासी हो, हर एक शिष्य के हर एक लेटर को पर्सनली प्रभुपाद ने रिप्लाई किया। और ऐसे ऐसे वो लेटर्स अगर आप पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे वैल्यूबल इंस्ट्रक्शंस, ऐसे नहीं कि केवल फॉर्मेलिटी पे रिप्लाई कर दिया। ट्रैवलिंग, मैनेजिंग, प्रीचिंग और ट्रांसलेटिंग, सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसलेटिंग। तो इसलिए यदि प्रभुपाद का जीवन देखें तो प्रभुपाद दिन के समय जो प्रभुपाद के पास आते, प्रभुपाद उनको प्रचार करते, और रात के समय प्रभुपाद उनको प्रचार करते जो आते नहीं उनके पास, जो आने वाले हैं आगे। सो ड्यूरिंग द डे टाइम प्रभुपाद वुड प्रीच टू दोज पीपल हु वुड कम टू हिम, एंड एट नाइट ही वुड प्रीच टू दोज पीपल हु हैवंट कम बाय ट्रांसलेटिंग बुक्स। इसे कहते हैं काबिलियत। हाँ, चरित्र तो था लेकिन शारीरिक बल देखिए उनका। एवरीडे मॉर्निंग वॉक, ट्रैवलिंग उस उम्र में, मैनेजिंग केवल मंदिर नहीं, मंदिर में जो भी समस्याएं वो, और कोई साधारण समस्या नहीं होती थी। कोई अफ्रीका का है, कोई रशिया का है, कोई जर्मनी का है, कोई अमेरिका का है, कोई इंडिया का है। हमें तो केवल इंडियंस को मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। सोचिए, हमारे अंडर अगर मैनेज करने को ये सब अलग अलग प्रकार के सब सैंपल्स दिए जाएं, तो इन सब को मैनेज करना, इनकी समस्याओं को मैनेज करना, उसके साथ साथ मायापुर का मंदिर यदि आपने देखा है, वृंदावन का मंदिर, जुहू, ये ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, और पूरे अमेरिका में कितने सारे मंदिर, वहां का प्रीचिंग, ये सब कुछ ट्रांसलेशन वर्क के साथ। फिर उनके हेल्थ उस उम्र में, कितने 80 वर्ष के हो चुके थे वो। तो यहां पर काबिलियत प्रभुपाद की देखी जा रही है। प्रभुपाद के एक शिष्य वो ज्वाइन करना चाहते थे, तो वो प्रभुपाद से कहे, उस समय वियतनाम वॉर चल रहा था अमेरिका का, तो उन्होंने प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद मुझे जबरदस्ती इस वियतनाम वॉर में जाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं अभी शरणागत होना चाहता था आपको। तो प्रभुपाद ने कहा कि कौन जबरदस्ती भेज रहा है। वो उस समय वो ड्राफ्ट बोर्ड था, बोला ये ड्राफ्ट बोर्ड की वजह से सबको जबरदस्ती भेजा जा रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है मैं लेटर लिखता हूं ड्राफ्ट बोर्ड को। अब देखिए एक फॉरेनर अमेरिका में, वो भी इंडियन सन्यासी, वो भी 70 वर्ष के ऊपर की उम्र, और वो ड्राफ्ट बोर्ड को लेटर लिख रहे हैं। वियतनाम वॉर चल रहा है और वो ड्राफ्ट बोर्ड को लेटर लिख रहे हैं कि दिस पर्सन ही वॉन्ट्स टू डेडिकेट हिज लाइफ टू द मिशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु टू प्रीच द प्योर मैसेज ऑफ भागवत धर्म एंड भगवद गीता एंड टू चेंज द कॉन्शियसनेस ऑफ द जनरल पॉपुलेस by chanting Hare Krishna and following the four principles. Prabhupada ने एकदम hardcore philosophy वो letter वो America के draft board को भेजा। So I request you to kindly relieve him so that he can do these services on behalf of Chaitanya Mahaprabhu. और उन्होंने प्रभुपाद की ये request को स्वीकार किया और उसको relieve किया। तो प्रभुपाद को इतना विश्वास था, उन्होंने तो इंदिरा गांधी इन सबको भी लेटर लिख दिया था, महात्मा गांधी को लिख दिया था। हालांकि लेटर उन तक पहुंचा नहीं, लेकिन प्रभुपाद ने लेटर लिख दिया था महात्मा गांधी को कि अब बस बहुत हो गया, अब आप रिटायर हो और हम दोनों मिलकर प्रचार करते हैं भगवद गीता का। और महात्मा गांधी का जब देहांत हुआ, उनका जब असैसिनेशन हुआ, उससे पहले प्रभुपाद ने उनको वॉर्न किया था कि समय आ चुका है, आप अब वो पॉलिटिक्स से बाहर निकलिए, आपके जान को खतरा है। उन्होंने प्रभुपाद ने वॉर्न किया था उनको। इंदिरा गांधी को लेटर लिख दिया कि सारे पार्लियामेंट मेंबर्स शुड बी चैंटिंग 16 राउंड्स, दे शुड बी ब्राह्मण इनिशिएटेड डिवोटीज चैंटिंग 16 राउंड्स एंड दे शुड कम इन द पार्लियामेंट हाउस आफ्टर दे फिनिश देयर 16 राउंड्स। इंदिरा गांधी को ऐसा लेटर लिखा था। तो कहीं पे प्रभुपाद ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कहीं पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जैसे बहुत बार प्रभुपाद को जो उस समय के योगी गुरु गए, उन्होंने प्रभुपाद को, और यहां तक कि ऐसा नहीं कि जो पाखंडी थे, जो प्रामाणिक थे, उन्होंने भी प्रभुपाद को कहा कि आप ये ऐसे धोती कुर्ता में अमेरिका में नहीं घूम सकते, आपको यहां उनकी वेशभूषा पहननी होगी। प्रभुपाद ने साफ साफ कह दिया मैं यहां पर उनकी संस्कृति लेने नहीं आया, वो बदलने आया हूं मैं। और उनके अंदर ये काबिलियत थी, उन्होंने कर दिखाया। जैसे प्रभुपाद की चतुरता यदि हम देखें, तो प्रभुपाद की एक शिष्या हुई थी गोविंद दासी, तो उनके पिताजी प्रभुपाद के पास आए शिकायत लेकर कि ये आपने क्या, एक तो मेरी बेटी घर बार छोड़कर यहां मंदिर में रहती है, और ये साड़ी वाड़ी क्या पहनती है ये, वो तो बोल नहीं पाए कि ये साड़ी है, ये क्या पहन रखा है इसने बेडशीट जैसा, उनको क्या पता साड़ी क्या, मतलब ये इंडियन ड्रेस पहना दिया है और ये अपना नाम भी कुछ गोविंदा गोविंदा दासी बोलती है, ये क्या है। तो उन्होंने प्रभुपाद को कंप्लेन कर रहे थे वो, यू हैव टेकन माई डॉटर अवे, यू हैव गिवन हर एन इंडियन नेम एंड इंडियन ड्रेस कोड। तो प्रभुपाद सुन रहे थे, और उस समय जब वो आए थे कंप्लेन करने तो कुछ इंडियंस बैठे हुए थे, तो प्रभुपाद ने उनको बुलाया, आप लोग आइए ना थोड़ा इधर बैठिए। तो वो सारे इंडियंस कुछ 8-10 थे, वो आके बैठे और ये खाली एक अमेरिकन। तो प्रभुपाद ने फिर उन सब इंडियंस के सामने इनको पूछा, सो यू डोंट लाइक इंडिया, यू डोंट लाइक इंडियन नेम, You don't like Indian dress? You don't like Indian culture? अभी इतने सारे सब देख रहे हैं, बोलो क्या बोलेगा अभी। तो तो वो अब इन सबको देख रहे हैं, इतने घेराव कर लिया. नो, वेरी वंडरफुल, इंडियन कल्चर इज वंडरफुल, इंडियन नेम इज वंडरफुल, सब कुछ. तो प्रभुपाद ने इनके सामने, सो यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम. और उन्हीं के मुंह से प्रभुपाद ने बुलवा दिया. जैसे ब्रह्मानंद स्वामी और गर्ग मुनि स्वामी उस समय बताया करते थे कि उनकी माताजी जब आई, उनकी मदर प्रभुपाद के पास शिकायत लेके कि हमारे मेरे दोनों बेटों को ले लिया, तो प्रभुपाद ने उस समय वह चतुरता से उनसे कहा कि भाई देखो, ये जो आपके दोनों बेटे ना, ये रास्ते में दारू पीकर, नशा कर, ड्रग्स लेकर गिरे पड़े थे. इनको वहां से उठाया मैंने और यहां पर देखिए कितने तंदुरुस्त. यदि आपने ब्रह्मानंद प्रभु, गर्ग मुनि प्रभु को देखा है हाल ही में भी, उस समय भी काफी वो तंदुरुस्त, तो दिखाया कि अभी देखो इनकी तंदुरुस्ती, इनके चेहरे पर तेज देखो. ये सब ड्रग्स और नशेड़ी ये गिरे पड़े थे, इनको उठाकर यहां पर मैं इनको शुद्ध शाकाहारी भोजन खिला रहा हूं, जो उनके सेहत के लिए, उनके मन के लिए, उनकी आत्मा के लिए कितना गुणकारी है. ये सब कुछ मैं खिला रहा हूं इन्हें, इनको रहने के लिए जगह दे रहा हूं, इनका देखरेख कर रहा हूं. आपको उल्टा पैसा मुझे देना चाहिए, इनकी देखरेख मैं कर रहा हूं. तो प्रभुपाद ने निकाला 2,000 डॉलर निकालो इनकी. तो इतनी प्रभावित हो गई, वो निकलते हुए कही कि अपने दोनों पुत्रों से कहा, यू आर इन राइट हैंड्स, स्टे वेयर यू आर इन राइट हैंड्स. एक बहुत वर्ष पहले राधा गोपीनाथ मंदिर में प्रभुपाद के एक डिसाइपल आए थे, महाक्ष प्रभु. वो बता रहे थे कि वो कैसे प्रभुपाद को शरणागत हुए. बहुत ही उनकी रोमांचक कथा थी. तो वो भारत आए थे, उन्होंने एक मूवी में तिब्बत के बारे में सुना था और निर्वाण के बारे में सुना था. तो उन्हें कुछ ठीक से समझ में नहीं आया था, उन्हें लगा था निर्वाण एक जगह की नाम है हिमालय में कहीं पर, तो निर्वाण पर जाना है. अब आप लोग सब जानते हैं निर्वाण क्या है. तो उन्हें लगा कि निर्वाण एक जगह है जहां पर जो आध्यात्मवादी हैं जाते हैं, पहुंचते हैं. वो हिमालय से आगे आप फिर निर्वाण में पहुंच जाते हो और फिर से आना नहीं. फिर तो वो भारत आए और भारत में वो ऋषिकेश और ऋषिकेश से आगे हिमालय की ओर निकले निर्वाण को ढूंढते हुए. तो सबसे पूछ रहे थे निर्वाणा निर्वाणा, वेर इज निर्वाणा. सभी उनको देख रहे, क्या पूछते हैं निर्वाणा. तो सभी को लगा कि हो सकता है कि निर्वाण के लिए, तो सब जाओ ऊपर, जाओ ऊपर ऊपर पहाड़ पे चढ़ते जाओ. तो सबसे निर्वाणा निर्वाणा निर्वाणा, गो अप. तो वो धीरे धीरे जब ऋषिकेश से ऊपर हिमालय की चढ़ाई शुरू की उन्होंने, तो उन्होंने कुछ और आध्यात्मवादियों को वहां देखा जो उनके साथ साथ चल रहे थे. और उनके पास हरे कृष्ण महामंत्र का कुछ कीर्तन था, तो टेप पे लगाए थे कीर्तन और वो भी कीर्तन करते थे. तो इनको ये कीर्तन बहुत आकर्षित किया. तो फिर ये भी उनके साथ हो लिए कि भाई इनके साथ रहूंगा तो फिर सुरक्षित रहूंगा. तो इनके साथ हो ली. तो उनमें से एक व्यक्ति ने महाक्ष प्रभु से पूछा कि कोई गुरु हैं क्या आपके जीवन में? नहीं, मेरे जीवन में तो कोई गुरु नहीं. तो इन्होंने, ये व्यक्ति ने अपने झोले से कुछ 8-10 फोटोएं निकाली, अलग अलग उस समय के जो टॉप लिस्ट में थे, वो 8-10 फोटोएं निकाली. कोई ये आनंद, कोई वो आनंद, कोई ये बाबा, कोई वो बाबा, कोई ये भगवान, कोई वो भगवान. बोले चूज करो इसमें से कौन सा पसंद आते हैं आप. वो देते ना किसी का रिश्ता ले जाते, चूज करो इसमें से. तो उन्होंने सब उस समय के गुरुओं के फोटो महाक्ष प्रभु को दिखाई. तब इन्होंने जो वो तिब्बतन मूवी में देखा था, तो निर्वाण तो ये सब जो बौद्ध धर्म के होते हैं उनका होता है. तो तो उन्होंने देखा कि जितने सारे फोटोएं थी सबकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी, इतने बड़े बड़े बाल थे ना, ऐसे ना भालू के समान सब दिख रहे थे। तो उसमें से उन्होंने, उनके पास वो जो व्यक्ति फोटो लाए थे उसमें से प्रभुपाद की एक फोटो थी, तो उन्होंने प्रभुपाद की फोटो देखी, अरे ये तो एकदम क्लीन शेव्ड है, निर्वाणा। उनके मन में केवल वो निर्वाणा निर्वाणा था, निर्वाणा ये। तो उन्होंने, वो जो व्यक्ति जिसने फोटो दिखाया उसने कहा कि ये वो महाक्ष प्रभु ने पूछा कि ये कहाँ रहते हैं, इनसे मैं मिल सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि ये रहते हैं वृंदावना। तो उनको ये बहुत अच्छा लगा, निर्वाणा वृंदावना, तो उनको लगा कि ये राइमिंग है, कुछ कनेक्शन है इसका। तो फिर वो हिमालय की चढ़ाई बढ़ाई छोड़कर बस पकड़कर वो निर्वाणा से गए वृंदावना। वृंदावना पहुंचे और वहां पर कृष्ण बलराम मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो प्रभुपाद का राधा दामोदर मंदिर में प्रवचन हुआ करते थे। तो वहां पर वो पहुंचे और वहां पर जैसे ही वो बताए कि वो जो पहली दफा श्रील प्रभुपाद के समक्ष आए और श्रील प्रभुपाद के मुख से उन्होंने सुना जो प्रवचन, उस प्रवचन में प्रभुपाद निर्वाण के बारे में बोल रहे थे। और प्रभुपाद के प्रवचन का कल्मिनेशन था दैट द अल्टीमेट निर्वाण इज, प्रहलाद महाराज सेज टू गो टू वृंदावन, वनम हरिम आश्रयेत। तो उन्होंने जब ये सुना कि अरे मैं जिस निर्वाण के पीछे दौड़ रहा था, उस निर्वाण को मुझे यहां पर ये व्यक्ति सही तरीके से समझा रहा है, तो उन्होंने फिर अपना जीवन श्रील प्रभुपाद को शरणागत किया। तो यहां पर हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे व्यक्ति, श्रुतकीर्ति प्रभु बता रहे थे कि एक बार वो प्रभुपाद के साथ फ्लाइट में थे, मेक्सिको जा रहे थे, तो श्रुतकीर्ति प्रभु प्रभुपाद के सर्वेंट थे और प्रभुपाद का ब्रेकफास्ट का टाइम आया, तो जो एयर हॉस्टेस थी वो सब पूछ रही थी, देखा सब यहाँ पर हरे कृष्णा बैठे हुए हैं, तो बहुत रुचि हुई उस एयर हॉस्टेस को, सब पूछ रही थी कि आप लोग कुछ लेंगे ये वगैरह। तो उन्होंने, तो प्रभुपाद के लिए लाए थे कुरमरे, प्रभुपाद ब्रेकफास्ट में थोड़ा कुरमरा लिया करते, तो कुरमरा निकाला श्रुतकीर्ति प्रभु ने, तो ये सभी देख रहे थे। अब वहां पे तो कोई उस समय फ्लाइट में इंडियंस ट्रैवल करते नहीं थे, तो उनको ये कुरमरा अजीब सा लगा, ये क्या होता है, क्योंकि वेस्ट में कुरमरा कोई जानता नहीं वहां। तो प्रभुपाद को कुरमरा दिया, प्रभुपाद ने थोड़ा सा लिया और उसके पश्चात फिर श्रुतकीर्ति प्रभु प्रभुपाद का महा ले रहे थे। तो ये एयर हॉस्टेस से रहा नहीं गया, तो एयर हॉस्टेस चलते चलते, बाकियों को सर्विंग कर रही थी, चलते चलते इसने एक हाथ श्रुतकीर्ति प्रभु के प्लेट से प्रभुपाद का महा लिया, खा लिया। और श्रुतकीर्ति प्रभु देखते रह गए कि इसकी इतनी डेरिंग, इतनी हिम्मत इसकी। तो प्रभुपाद हंसते हुए कहे, दैट्स हाउ यू ग्रैब मर्सी। और उसे इतना अच्छा लगा वो कुरमरा, हालांकि उसे ये नहीं पता था कि एक शुद्ध भक्त का महाप्रसाद था। तो उसने तुरंत फिर श्रुतकीर्ति प्रभु प्रभुपाद से पूछा कि मैं कुछ तो आप लोग लीजिए, आप कुछ नहीं ले रहे। तो प्रभुपाद ने फिर श्रुतकीर्ति प्रभु से कहा हॉट मिल्क, तो वो भी हॉट मिल्क। तो उसने पूछा और कुछ, एनीथिंग एल्स? प्रभुपाद ने कहा सम फ्रूट्स। तो वो और दो भक्त थे, श्रुतकीर्ति प्रभु और एक और थे और प्रभुपाद, तो श्रुतकीर्ति प्रभु ने तीन के लिए लेके आना। तो वो फिर दूध, और हालांकि वो दूध सर्व नहीं करते थे वहां, हॉट मिल्क सर्व नहीं करते थे उस फ्लाइट में, लेकिन उन्होंने प्रभुपाद के लिए विशेष और उनके शिष्यों के लिए गर्म दूध और फ्रूट्स का आयोजन किया वो एयर हॉस्टेस ने। और कुछ 15 वर्ष बाद, जैसे यहां पर पदयात्रा डिवोटीज आए थे ना, तो वैसे 15 वर्ष बाद पदयात्रा डिवोटीज वेस्ट में वो एक गांव पहुंचे और वहां गांव में उनको रहने के लिए जगह नहीं थी, तो एक वृद्ध महिला ने उनको अपने घर में बुलाया और उनको पकाकर शाकाहारी भोजन खिलाया। और उन्होंने कहा, वो वही एयर होस्टेस थी जिन्होंने वो पफ्ड राइस खाया था प्रभुपाद का। वो उतना सा जो उनका संग हुआ, जो महाप्रसाद मिला, वो आगे चलकर फिर उन्होंने माला शुरू की और वो दीक्षित तो नहीं हुई लेकिन हरे कृष्णा के सिद्धांतों का पालन उन्होंने शुरू किया। हम 2 वर्ष पहले इटली गए थे तो वहाँ पर एक जगह है मिएस्त्रे, तो वहाँ पर एक डिवोटी से हम मिले तो डिवोटी बता रहे थे कि इन्हें श्रील प्रभुपाद की कृपा कैसे मिली। तो ये जब अपनी युवावस्था में थे तो ये बताए 1972 की बात है, और उस समय प्रभुपाद 1972 में रोम इटली में वहाँ गए थे और पेपरों में हेडलाइंस में आया था, स्वामी फ्रॉम इंडिया हु टर्न्ड हिप्पीज इनटू मॉन्क्स कम्स टू रोम, तो ऐसे हेडलाइंस में आया था। तो इनकी जो दादी वो पढ़ नहीं पा रही थी तो उन्होंने इनको बोला कि मेरे लिए, मेरे को पढ़ के सुनाओ ये क्या है ये हेडलाइन। तो वो अपनी दादी के लिए पढ़ रहे थे, इंडियन स्वामी कम्स टू रोम वो हैज टर्न हिप्पीज इनटू मॉन्क्स, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, ये कौन है भाई। और उनका फेस्टिवल है रोम में कुछ हरे कृष्ण फेस्टिवल, तो इनके अंदर जिज्ञासा हुई उस हरे कृष्ण फेस्टिवल में जाने की। तो उस समय इनका जो प्रोफेशन था, ये एक इलेक्ट्रिशियन और साउंडमैन थे वो रॉक कॉन्सर्ट्स में, वो साउंड सिस्टम लगाना सब, वो स्ट्रोब लाइट्स और वो सब डिस्को लाइट्स लगाना, ये सब उनका काम था। तो वो एक दो दिन की छुट्टी लेकर अपने काम से वो प्रभुपाद के फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए रोम जा रहे थे। तो वो टिकट खरीद रहे हैं, लाइन में खड़े रोम जाने की टिकट खरीदने की लाइन में खड़े हैं, तो उनका कॉन्ट्रैक्टर आया, उनको लाइन से बाहर निकाला और बोला कि हमारा कल रॉक कॉन्सर्ट है और आपको उसमें ये सब लगाना है, स्ट्रोब लाइट्स और साउंड ये सब कुछ लगाना है। तो उन्होंने कहा, नहीं 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 नहीं, मैं छुट्टी लिया हूँ, मैं 2 दिन के लिए मैं इनसे मिलने जा रहा हूँ। तो किससे मिलने जा रहे? वो देखा, वो क्लिपिंग, पेपर का क्लिपिंग लिए थे, बोला इनसे मिलने जा रहा हूँ। तो कौन है? हैं कोई इंडियन स्वामी है। बोले कि अरे ये क्या फालतू के काम कर रहा है तू? तो इन्होंने, ये कॉन्ट्रैक्टर ने इनसे, इनको कहा कि मैं तुमको डबल पैसा दूंगा यदि तुम ये मेरे लिए काम करोगे। उन्होंने कहा, नहीं मैं नहीं करूँगा। बोला, मैं ट्रिपल दूंगा तुमको। तो फिर पैसे के लोभ से वो लाइन से बाहर आ गए। बोले ठीक है। तो उनको 3 गुना ज्यादा पैसा मिला उसके लिए, और वो बोल रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ रहे, मैंने बोला कि मैं कोस रहा था अपने आप को कि मैं पैसों के लालच में प्रभुपाद का संग छोड़ा मैंने, वो लाइन से बाहर आ गया। तो 13 वर्ष पश्चात फिर 1987 में वो अपनी पत्नी के साथ, उन्होंने वो कुछ बिजनेस करते थे, ट्रिंकेट्स बेचने का, किसी भी मॉल के बाहर या रास्ते में। तो हुआ क्या कि वो ट्रेवेस्टा करके एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने अपना वो शॉप जैसा लगाया था। तो वहाँ पर एक हरे कृष्णा के डिवोटी आए उनके शॉप पर, और वो बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो उनका वार्तालाप हुआ, उन्होंने उनसे कुछ खरीदा ये हरे कृष्ण डिवोटी ने, और इन्होंने जब इनको पैसे दिए, इस डिवोटी ने इनको पैसे दिए, तो इटालियन भाषा में थैंक यू को बोलते हैं ग्रासिया मिले। तो इन्होंने कहा ग्रासिया मिले, थैंक यू। तो वो डिवोटी ने कहा प्रागा, मतलब मेंशन नॉट, जैसे इंग्लिश में बोलते, कोई बोलता है ना थैंक यू, तो दूसरा बोलता है ना मेंशन नॉट, तो इटालियन भाषा में उसको बोलते हैं प्राग। तो इन्होंने वो ये हरे कृष्ण डिवोटी ने उसको प्रागो कहा। तो अब वहां पर प्रागो का मतलब होता है प्रार्थना। तो इस व्यक्ति ने वो डिवोटी को कहा कि नहीं आप गलत बोल रहे। बोला नहीं नहीं मैं जानता हूं सही ग्रामर क्या है, मैं जानबूझ के बोल रहा हूं। बोले क्योंकि कलयुग में प्रार्थना की बहुत जरूरत है। तो बोले क्या कौन सी प्रार्थना बोल रहे हैं। तो उन्होंने फिर शुरू किया, उनको तो प्रचार के लिए एक स्पार्क चाहिए था, तो उन्होंने शुरू किया प्रार्थना क्या होती है। और तो ये वो हरे कृष्ण डिवोटी का स्टाइल था प्रीचिंग शुरू करने का, ये उनका एक अलग से तरीका था प्रीचिंग शुरू करने का किसी। तो फिर उन्होंने इनको बताया सब कुछ। अब इनको पता नहीं कि ये उसी संस्था के हैं 1972 में जिनके फाउंडर आचार्य से मैं मिलने जा रहा था। तो फिर ये इतने प्रभावित हो गए इस हरे कृष्ण बुक डिस्ट्रीब्यूटर से, तो कि उनको अपने घर पे रखा 10-15 दिन अपने घर पे रखा। और फिर इस डिवोटी ने ये दोनों पति पत्नी को कहा कि फ्लोरेंस में आप आइए, वहां पर 15 अगस्त को बड़ा फेस्टिवल है, रथ यात्रा थी वहां पर, तो रथ यात्रा के लिए बुलाया, बड़ा फेस्टिवल है। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं क्योंकि 15 अगस्त वहां पर, उन्होंने 14 अगस्त को बहुत बड़ा अपना दुकान मेन स्ट्रीट में लगाने का निश्चय किया था। तो उन्होंने इस डिवोटी को कहा कि नहीं हम नहीं आ सकते क्योंकि हमारा 6 मिलियन लीरा का प्रॉफिट हर साल हम वहां पे करते हैं। कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल 15 अगस्त को होता है उस ट्रेवेस्ट जगह में। बोले कि हमको यहाँ पे हमारी दुकान लगानी है 14 अगस्त को, हम नहीं आ सकते। तो इस डिवोटी ने बोला कि ठीक है आप केवल ये रखिए, इनविटेशन रखिए, एड्रेस रखिए, यदि आपका मन हुआ तो आप आइए। तो उन्होंने रथ यात्रा का इन्विटेशन उनको दे दिया और डिवोटी जाते जाते उनको कहे कि डोंट सेल योर सोल फॉर 6 मिलियन लीरा, बस ये एक लाइन कह के वो चले गए। तो उनकी बात एकदम चुभ गई। और फिर उन्होंने इनविटेशन में देखा प्रभुपाद का फोटो और उनको ध्यान आया कि 13 वर्ष पहले पैसों की लालच में मैं इसी व्यक्ति के कार्यक्रम में नहीं गया था और ये व्यक्ति 13 वर्ष पश्चात मुझे फिर बुला रहे हैं और फिर मेरे सामने वही टेस्ट है, ये प्रोग्राम या पैसे। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, 6 मिलियन लीरा का बिजनेस छोड़कर वो और पति पत्नी गए फ्लोरेंस, रथ यात्रा अटेंड की और आज दोनों इनिशिएटेड डिवोटी हैं। बोल रहे थे कि हमारा खाली एक ही दुख कि अगर 1972 में मैं उस समय चला जाता तो प्रभुपाद का साक्षात दर्शन होता और प्रभुपाद का मैं आज डिसाइपल होता। तो देखिए प्रभुपाद जाने के पश्चात भी, प्रभुपाद जाने के पश्चात भी कैसे प्रभुपाद ने बद्ध जीवों को अपनी शरण में प्रभुपाद लाए। तो इसलिए जब हम प्रभुपाद के चरित्र को और प्रभुपाद की काबिलियत को देखते हैं तो प्रभुपाद ने हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ वो तो पार्षद थे भगवान के, वो तो एक शुद्ध भक्त थे, वो तो सेनापति थे नित्यानंद प्रभु के, हाँ हम कैसे उनकी उनसे तुलना कर सकते, मेरे अंदर तो इतने अनर्थ हैं, मेरे अंदर इतनी खामियां हैं, तो मुझसे जो बन पड़ेगा बस उतना ठीक है। नहीं, प्रभुपाद को कभी हमें उस प्रकार से नहीं देखना चाहिए कि कोई बहुत मिस्टिकल फिगर, वो आसमान से जैसे कोई फरिश्ते के रूप में आए। प्रभुपाद ने जैसे भगवान श्री कृष्ण, जैसे रामचंद्र जी, उन्होंने मनुष्य समाज में रहते हुए अपनी लीलाएं की, वैसे प्रभुपाद ने हमारे बीच में रहते हुए, और प्रभुपाद अक्सर कहा करते थे, प्रभुपाद ने यहां तक कि भागवतम के ध्रुव महाराज के प्रसंग के परपोट में लिखा है, यदि आप पढ़ो तो ध्रुव महाराज के प्रसंग में जब ध्रुव महाराज अपनी माता के विषय में पूछते हैं, जब वो भगवत धाम वैकुंठ विमान में बैठ के जाते हैं तो पूछते हैं कि मेरी जो माता है सुनीति उनका क्या होगा, तो वैकुंठवासी कहते हैं कि देखो आपकी माता आपसे पहले जा रही है। तो उस परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि जिस प्रकार से ध्रुव महाराज की भक्ति के वजह से ध्रुव महाराज की माता भगवत धाम को प्राप्त की, प्रभुपाद लिखते हैं उसी प्रकार से यदि मेरा एक कोई प्रामाणिक शिष्य निकला तो उसकी प्रामाणिकता के वजह से शायद मैं भी भगवत धाम जा सकूं एक दिन। श्रील प्रभुपाद की। अब ये बात किसी को बोलना ये अलग बात है, और श्रील अपने भक्तिवेदांत परपट में इसे छापना नित्य रूप से सब लोगों को पढ़ने के लिए वो अलग बात है। और ऐसे कितने अलग अलग प्रसंग हैं जहां पर प्रभुपाद अपनी पुस्तकों में भागवत के परपट्स में लिखे हैं। श्रीमान जॉर्ज हैरिसन, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू श्रीमान जॉर्ज हैरिसन, ऐसे परपट्स में जॉर्ज हैरिसन का गुणगान किए हैं, तमाल कृष्ण महाराज का गुणगान किए हैं, अपने शिष्यों का गुणगान किए हैं। तो इन सब से प्रभुपाद हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं, और केवल प्रोत्साहन नहीं, प्रभुपाद के आदेशों के साथ प्रभुपाद ने जैसे उनको उनके गुरु महाराज ने आदेश के साथ शक्ति दी, वैसे प्रभुपाद ने जब ये कहा यू सिंपली चैंट 16 राउंड्स ऑफेंसलेसली एंड यू फॉलो द फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स सिंसियरली, प्रभुपाद कहे आई विल टेक यू बैक होम बैक टू गॉड इट, दिस इज माई प्रॉमिस। तो यदि ऐसे भगवान के शुद्ध पार्षद जिनका ऐसा चरित्र रहा, जिनकी ऐसी काबिलियत रही, यदि वो आश्वासन दे रहे हैं तो हमें करना क्या है, जैसे उन्होंने उनके गुरु महाराज के आदेशों का पालन किया एज इट इज। और उन्होंने क्या कहा, माई रिलेशनशिप विथ माई स्पिरिचुअल मास्टर वॉज ओनली 5 words, हाउ कैन आई सर्व यू। तो श्रील प्रभुपाद का जो आविर्भाव दिवस हमने मनाया तो हमारी यही प्रार्थना श्रील प्रभुपाद के चरणों में होनी चाहिए कि यस प्रभुपाद, सिमिलरली माई रिलेशनशिप विथ यू एंड योर रिप्रेजेंटेटिव शुड ऑल्सो बी ओनली 5 words, हाउ कैन आई सर्व यू। उसमें हम और 2 words ऐड करेंगे, हाउ कैन आई सर्व यू श्रील प्रभुपाद। तो वो 2 और word ऐड कर ये हमारी प्रार्थना श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों पर होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद की। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।